या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इनाम जीते हैं, सवेरे उसी के शरीर के ऊपर सफेद दाग नजर आने लग जाता है और महीनों तक दवाई करने पर भी वो दाग मिटता नहीं, बढ़ता चला जाता है। कहां चली गई सुंदरता, कहां चला गया वो सब थाट, वो सब मेडल्स पड़े हैं, वो इनाम लटके हुए हैं शो केसेस में रखे हुए, सर्टिफिकेट्स दीवारों पर टंगे हुए हैं फ्रेम किए हुए, लेकिन जो था वो चला गया, नष्ट हो गया। बस वैश्रवण राजा ने दीक्षा ले ली और गुरु के सानिध्य में 11 अंगों का अध्ययन किया, 16 कारण भावनाएं भाई, और 3 लोक में तहलका मचा देने वाली तीर्थंकर नामक उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का बंध बांधा और फिर अपराजित विमान में अहमिंद्र बने। 2 तीर्थंकर अपराजित विमान से, जयंत विमान से 2 तीर्थंकर आए और 3 तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि से आए। अनुत्तर विमानों से आने वाले तीर्थंकर और फिर ग्रेवेक से आने वाले तीर्थंकर और भी थे, सुमतिनाथ भगवान आदि, तो ऐसे 12 तीर्थंकर कल्पातीत विमानों से आए थे और 12 तीर्थंकर 16 स्वर्गों से आए थे। तो जब मल्लिनाथ भगवान वहां से आए यहां और 55,000 वर्ष की आयु थी उनकी, जब 100 साल की उम्र हुई, कुमार थे छोटे से 100 साल के, और 100 साल अभी आज के हिसाब से 100 साल देखो तो अलग हिसाब है, और अंत में पंचम काल के अंत में जब 20 साल की उम्र रह जाएगी तब तो फिर 100 साल के सपने भी नहीं आने वाले किसी को। तो जब वो 100 साल की उम्र के हुए और फिर विवाह के लिए जा रहे थे बारात लेकर, तब उनको जो जिस नगर में विवाह था उनका, वहां के मंदिरों की ध्वजाएं दिखी और ध्वजाओं को देखकर जाति स्मरण हो गया कि मेरे अपराजित विमान में पूर्व जन्म में भी मंदिरों पर ऐसी ही ध्वजाएं लहराती थी, वैराग्य हो गया। और अकेले मल्लिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान को भी ऐसा ही वैराग्य हुआ बारात में, 2 तीर्थंकर बारात में वैराग्य हो गए, जो सबसे ज्यादा राग का स्थान होता है वहां वैराग्य हो गए। तो ये सब जन्मों के संस्कार रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अब लोग बोलते हैं कि भरत चक्रवर्ती की इतनी रानियां थी फिर भी उनको अंतर्मुहूर्त में हुआ कि नहीं केवल ज्ञान, हम भी कर लेंगे ऐसा, ज्ञानी जीव कर लेता है ऐसा, ऐसा नहीं, इतनी उतावली मत करो इतना बड़ा निर्णय लेने में, थोड़ा विचार करो कि उनने पहले क्या किया था और आप क्या कर रहे हैं, तुलना करो दोनों में। भरत की कितने भवों की साधना थी और उस भव में भी उनको क्यों हुआ केवल ज्ञान, आचार्य सकल कीर्ति जी से पूछो, मूलाचार प्रदीप में उन्होंने खुलासा किया है कि भरत को केवल ज्ञान क्यों हो गया, कपड़े उतारते ही साथ उनने खुलासा किया, क्योंकि जब तक वो गृहस्थ थे तब तक प्रतिदिन शाम को सामायिक करते थे और सामायिक करते थे, दिन भर में जो कर्म बंद होता था वो कर्म ढीला पड़ जाता था। मूलाचार प्रदीप में ये खुलासा किया सामायिक की महिमा बतलाते हुए, आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने लिखा है कि रोज शाम को ऐसी सामायिक करते थे कि बिजली गिर जाए कुछ डगमगाएंगे नहीं, और उस सामायिक की वो शक्ति थी कि वो कर्म ढीले पड़ते रहते थे और बस उसको, उन कर्मों को सिर्फ रत्नत्रय की एक चोट जरूरी थी, दीक्षा लेते ही वो चोट लगी कर्मों को, नष्ट हो गया, घातिया कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान हो गया। ऐसी कोई तैयारी है क्या बाकी लोगों के पास जो सोच रहे हैं कि भरत जैसा काम मैं भी कर लूं, इतनी जोरदार तैयारी चाहिए भरत जैसी उपलब्धि के लिए, और पूर्व जन्म में क्या किया था भरत ने। तो ये सब जन्म जन्मांतरों का वर्णन आप पढ़ो तो पता चलेगा कि ये मामूली खेल नहीं है, हंसी खेल नहीं, मोक्ष प्राप्त करना कई बार तो हमें मतलब आंसू आ जाते हैं, नमो सिद्धानम बोलते समय मोक्षगामी उन जीवों को नमस्कार करते हुए लगता है कि उन्होंने वो काम कर लिया जो अनादिकाल से आज तक अपन संसार में घिसटते घिसटते रगड़ते रगड़ते कर नहीं पा रहे, कितना बड़ा काम किया उन्होंने। कोई भी मोक्षगामी हो, कोई भी मतलब A to Z हम बता रहे हैं पूरे, जितने भी जीव सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं कोई किसी से कम नहीं है, इतना बड़ा काम किया, उससे बड़ा कुछ नहीं है संसार में, सिद्ध पद की प्राप्ति से बड़ा कोई दूसरा काम हो नहीं सकता, कितना बड़ा काम किया उन्होंने अपनी कषायों को जीता, आप कल्पना करो कषायों को जीतना, क्रोध को जीतना कितनी बड़ी बात है, सोच लो आप, अनुभव करके देखिए। उन्होंने सब कर्मों को जीत लिया, वो धन्य है वास्तव में। ते धन्ना सुकयत्था, आचार्य कुंदकुन स्वामी भी जब लिखते हैं ते धन्ना तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या कह रहे हैं महाराज। जब तक ये बहुमान अंदर नहीं आता तब तक फिर आगे गति कैसे हो सकती है, वो विशुद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। शब्दों को पढ़ लेना रट लेना अलग बात है, लेकिन अंदर से वो बहुमान, वो अंदर से एकदम फरूरी आनी चाहिए, मतलब आत्मा के प्रदेश आंदोलित हो जाने चाहिए, तब जाकर के वो भावों की दशा प्रकट होती है। नहीं तो वैचारिक रूप से इंटेलेक्चुअली आप बहुत कुछ जान सकते हैं, सोच सकते हैं, तर्क लगा सकते हैं, लेकिन भावनात्मक स्थिति तब आती है जब ये चीज आती है अंदर। भावों की कोई भाषा नहीं है, या तो आंखों में कुछ आंसू छलक जाएंगे, या रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या फिर आवाज भर्रा जाएगी, गदगद हो जाएगी कंठ, या फिर शरीर में कपकपी आ जाएगी, या फिर बस वो स्वसंवेदन गम में कोई ऐसी स्थिति बनेगी, अंदर खुद एहसास कर सकता है कि क्या हो रहा है मुझे। भक्ति का अनुभव कैसा होता है, सिर्फ वो अनुभव करने वाला जानता है। तो ये भक्ति और फिर ये बहुमान आना चाहिए उन महापुरुषों के प्रति जिन्होंने वो काम किया। दौलतराम जी ने कहा ना, धनी धन्य है जे नर जीव नर भव पाए, ये कारज किया। वो कारज कोई मामूली कारज नहीं है, बहुत बड़ा काम। वो तो हमें ऐसा लग रहा था कि उस समय जब हम रोड पर चल रहे थे, या जितने ऐसे परिसर और उपसर्ग की स्थितियां बनती है, तब ऐसा लगता है कि देखो जो लोग चर्चा करते हैं, काश वो आज हमारे साथ होते तो उनको पता चलता। हमारे साथ तो क्या मतलब, हमसे बड़े बड़े बहुत सारे इतने अगणित साधक हो गए और अभी भी हैं। तो कभी भी किसी भी साधु के सानिध्य में रह करके देखो तो पता चलता है कि कितना बड़ा काम है। जिनेंद्र वर्णी जी और फिर अन्य भी बड़े बड़े बहुत सारे साधक हो गए हैं, आप एक दिन में एक क्षण में किसी साधु का निर्णय नहीं कर सकते। मान लो कोई साधु विकथा कर रहे हैं, राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, तो उस चर्चा को देख करके आप क्या समझोगे कि इन साधु को आत्मा का क्या आनंद आता होगा, ये राजनीति की चर्चा में व्यस्त है। लेकिन नहीं, वो अंतर मुहूर्त काल है प्रमाद का। फिर उनकी अप्रमत्त दशा को भी देखिए आप, उनकी साधनाओं को भी देखिए, उनके केशलोंच को देखिए, उनके पद विहार को देखिए, उनके एकाशन को देखिए, उनके अंतराय को देखिए, उनके नीरस आहार को देखिए, उनकी समता को देखिए, उनके रोगों में कैसे वो सहनशीलता है उसको देखिए, उपसर्गों के समय उन कैसे कष्ट सहन कर लेते हैं उसको देखिए। आरा का जो अग्निकांड है उसको कभी पढ़ा आपने? तीन मुनिराज जल गए थे बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनके गुरु ने चौमासे में उनसे बार बार कहा कि जल गया शरीर तो जल गया, कोई बात नहीं, बोले मर जाएंगे क्या हो गया, लेकिन रत्नत्रय की आराधना बरकरार रखना। बोले क्या उपदेश देते, वहां के जो संस्मरण सुनाने वाले श्रावक लोग हैं उनका गला भर आता सुनाते सुनाते कि क्या गुरु ने उनको बल दिया है। बोले एकदम जल कर झुलस गया था पूरा शरीर, ठंड के दिन थे, रात का समय था, और फिर जिस कक्ष में वो ठहरे हुए थे वहां पर वो जो घास प्यार बिछाते ना पलाल, वो रखा हुआ था तृण संस्तर जैसा, तो वहां पर वो महाराज रुके हुए थे, और फिर किसी ने लालटेन रख दी, और फिर कैसे रात में आग लग गई भगवान जाने, एकदम झुलस गए, बुरी तरह झुलस गए, और फिर उनमें क्षुल्लक जी का तो प्राणांत हो गया था बाद में, और बाकी दो मुनियों जिनको जो चले थे वो भी धीरे धीरे संलेखना के क्रम से। अब इन सब घटनाओं को देखते हैं और फिर उनकी नजदीकी से जब अध्ययन करते हैं तब समझ में आता है कि साधु कोई मामूली हस्ती नहीं होती। दीक्षा लेना कोई हंसी खेल नहीं है, दीक्षा वही ले सकता है जिसके अंदर ये बात हो कि कल से मेरे आहार का कोई ठिकाना नहीं है। एक दिन अंतराय आ सकता है, दो दिन, तीन दिन, पांच दिन, एक हफ्ते, एक महीने। धन्य कुमार मुनि को 9 महीने तक लगातार अंतराय हुआ था, और आजीवन भी अंतराय आ सकता है। सकल भूषण मुनि, उनने जब से दीक्षा ली थी अंत तक उनका एक भी आहार ठीक नहीं हुआ। कितनी बड़ी चीज है दीक्षा, ये तो कभी कभी क्या होता है, कर्मोदय से दीक्षार्थी भटक जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम ये कितनी बड़ी निधि हमने प्राप्त की है। और कभी श्रावक भूल जाते हैं, दीक्षार्थी को देख करके वो विनय और वो बहुमान नहीं आ पाता। अरे है बहुत सारे दीक्षार्थी, कितने पिच्छेधारी, किस किस के क्या क्या करते रहे अपन, कितनी सेवा करें, ऐसा नहीं है। हर पिच्छेधारी की कीमत है, हर पिच्छेधारी की। कौन जानता है कब किसका कौन सा गुणस्थान हो जाए, और क्या पता आज जिसको आप एकदम गिरा हुआ समझ रहे हैं वो अपने से पहले सिद्ध दशा को प्राप्त करने वाला जीव हो, कौन जानता है। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होता है कि कभी कोई चीज छूट जाए, फिर आगे चल करके अपने आप जाति स्मरण से या कभी उसके प्रति वो हो जाए। हाथी को त्रिलोक मंडन को हो गया सम्यक दर्शन, पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया उसने, फिर आयु पूर्ण करके उसी ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में गया। पहले मुनिपद धारण करके ब्रह्मोत्तर स्वर्ग गया था, अब हाथी के पर्याय में संलेखना पूर्वक मरण करके पंचम स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, छठे स्वर्ग में। लेकिन अब की बार सही तरीके से गया, मुनिपद धारण करके थोड़ी सी भूल हो गई थी इसलिए तिर्यंश योनि मिली थी, लेकिन अब तिर्यंश गति में जो सुधार हुआ है, अब दोबारा नरक और पशु गति को वो जीव प्राप्त नहीं होने वाला। अभी भी है वो छठे स्वर्ग में, दस सागर पूरे नहीं हुए राम को हुए, राम के जमाने की घटना है, दस सागर कहाँ हुए। तो तन निसर्गात अधिगमात वा, सम्यक दर्शन निसर्ग से होता है और अधिगम से भी होता है। आगे की व्याख्या दोपहर में। निसर्ग स्वभाव इत्यर्थ, तीसरा सूत्र चल रहा था, तन निसर्गाद अधिगमात वा, वह निसर्ग से वा अथवा अधिगमात, अधिगम से उत्पन्न होता है। निसर्ग स्वभाव इत्यर्थ, निसर्ग यानी स्वभाव, अधिगमो अर्थावबोध, अधिगम यानी अर्थ का अवबोध, यानी पदार्थ को जान लेना। तयोर हेतुत्वेन निर्देश, इन दोनों का हेतु रूप से निर्देश किया गया है, कथन किया गया है। कस्या हा? किसका हेतु, क्रियाया हा? क्रिया का, कोई क्रिया हो रही है उसमें उत्पत्ति का कारण बता दिया, हेतु उसका कारण क्या है, काच क्रिया, वो कौन सी क्रिया है। उत्पद्यते इत्यभ्याह्रियते अध्याह्रियते, उत्पन्न होता है, ये अध्याहार करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है कि सूत्रों में कुछ चीज़ें अध्याहार से समझी जाती है। अध्याहार का मतलब होता है कि अपने विवेक से, अपने अपनी समझ से उसको लगाना पड़े, कहीं से जोड़ करके वो अर्थ निकाला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गच्छामि, एक शब्द गच्छामि, या इच्छामि, उसका अर्थ क्या होगा, गच्छामि यानी जाता हूँ और इच्छामि यानी इच्छा करता हूँ, चाहता हूँ। तो अब इसके साथ में अहम का अध्याहार हो जाता है, कौन जाता हूँ, मैं जाता हूँ, कौन इच्छा करता हूँ, मैं करता हूँ, ये अध्याहार हो जाता है। गच्छति, अब इसके सामने असौ लगा दो या फिर अयम लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन उसका अध्याहार हो जाता है। तो यहाँ पर क्रिया का अध्याहार किया गया है, वह निसर्ग से अथवा अधिगम से। अब इसके आगे क्या अध्याहार करना पड़ेगा, अध्याहार करने का मतलब उत्पन्न होता है, ये लगाना पड़ता है। कुछ चीज़ें सूत्र में पूरी नहीं लिखी जाती विस्तार के साथ, कुछ चीज़ें अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से समझनी पड़ती है, उसका नाम अध्याहार। इति अध्याह्रियते उत्पद्यते, इस क्रिया का अभ्याहार किया जाता है, अध्याहार किया जाता है। सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम, क्योंकि जो सूत्र होते हैं सोपस्कारत्वात् कुछ अपने अंदर छुपा कर चलते हैं और कहीं दूर से संबंध भी स्थापित कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उत्पन्न होने रूप जो क्रिया है उसका यहाँ अध्याहार करना पड़ेगा। तद एतत् सम्यक् दर्शन निसर्गादधिगमाद् वा उत्पद्यते इति, इस प्रकार तत् यानी यह जो सम्यक दर्शन की चर्चा है, वह जो यह सम्यक दर्शन है निसर्गात स्वभाव से अधिगमात या अर्थावबोध से उत्पद्यते उत्पन्न होता है। अत्राह, अब यहाँ कोई कहता है, क्योंकि जब व्याख्या होती है तो फिर बीच में कुछ प्रश्नोत्तर भी होते हैं, तो यहाँ पर कोई कहता है निसर्गजे सम्यक दर्शने अर्थाधिगम स्यात् वा न वा। बहुत बढ़िया शंका है कि निसर्गज सम्यक दर्शन में अर्थावबोध यानी नौ पदार्थों का या सात तत्वार्थों का अवबोध यानी ज्ञान होता है या नहीं होता। आप कह रहे हैं कि निसर्गज सम्यक दर्शन अपने आप हो जाता है, स्वभाव से हो जाता है, तो उसमें क्या तत्व ज्ञान नहीं होता या होता है, ये शंका। यद्यस्ति तदपि अधिगमजमेव नार्थांतरम, अगर उसमें अर्थावबोध होता है निसर्गज में तो फिर अधिगमज और उसमें कोई फर्क नहीं रहा, वो भी अधिगमज सम्यक दर्शन हो गया। अथ नास्ति, अब अगर नहीं मानते कि निसर्गज सम्यक दर्शन में अर्थावबोध है, ऐसा नहीं मानते, तो कथम अनवबुद्ध तत्वस्य अर्थश्रद्धानमिति, जिसने तत्व को ही नहीं जाना उसको अर्थश्रद्धान किस प्रकार संभव है। मतलब बिना जाने वो श्रद्धा किसकी करेगा, और अगर जान रहा है तो फिर उसको अधिगमज कह दो, निसर्गज क्यों कह दो। शंका समझ में आई ना। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, दो प्रकार से होने के कारण सम्यक दर्शन के दो भेद हो गए। कौन से दो भेद हो गए? निसर्गज और अधिगमज। तो फिर शंकाकार ने शंका क्या रखी? अधिगमज सम्यक दर्शन का खुलासा करते हुए ऊपर बताया अधिगम का मतलब होता है पदार्थों को जानना, तो फिर शंका क्या है उठी कि क्या निसर्गज सम्यक दर्शन में पदार्थों को नहीं जानता? अगर जानता है तो फिर वो अधिगमज हो गया। शंका ही समझ में, निसर्गज सम्यक दर्शन में क्या पदार्थों को नहीं जानता? जानता है, अगर जानता है तो फिर अधिगमज हो गया, और यदि नहीं जानता तो फिर ये दूसरी शंका आ रही है, कथम अनवबुद्ध तत्वस्य अर्थ श्रद्धानमिति, फिर जिसने पदार्थ को ही नहीं जाना है तो फिर उसका श्रद्धान कहाँ से करेगा? जिसकी जानकारी ही नहीं है उसकी श्रद्धा कैसे बनेगी? अपन देव शास्त्र गुरु को जानते हैं तभी मानते हैं, तो जिसने तत्वार्थों को जाना ही नहीं तो बिना जाने कैसे श्रद्धा करे? नैष दोष, आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि ये जो तुम्हें लग रहा है कि इसमें गड़बड़ी हो रही है, ये दोष नहीं है। क्यों? उभयत्र सम्यक दर्शने अंतरंगो हेतुस तुल्यो, दोनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में, कौन से दोनों? वही दोनों, अधिगमज निसर्गज और अधिगमज, इन दोनों सम्यक दर्शनों में अंतरंगो हेतु तुल्यो, अंदर जो कारण है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का वो तुल्य माने एक समान है। दर्शन मोहस्य उपशमः क्षयः क्षयोपशमो वा, ये तीन प्रकार के करण होते हैं कर्म में, कर्म सिद्धांत में इनका वर्णन है, 10 करण होते हैं, तो उनमें ये समझ लो आप उपशम क्षय क्षयोपशम, इसमें अंदर से दोनों में यही बात हो रही है, चाहे वो किसी कारण से बाह्य कारण से उत्पन्न हो लेकिन अंदर में दोनों का कारण एक है। दर्शन मोहनी का, दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व, उसका उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम है। तस्मिन सति, उसके होने पर यत बाह्योपदेशाधृते प्रादुर्भवती नैसर्गिकम, अंदर से दर्शन मोहनी का क्षय क्षयोपशम उपशम जो भी हो गया वो तो अंदर तो ठीक है, लेकिन बाहर जहां उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी, बाह्य उपदेशाद रिते प्रादुर्भवती, जो बाह्य उपदेश के बिना प्रादुर्भूत होता है तद नैसर्गिकम, उसका नाम निसर्गज सम्यक दर्शन, नैसर्गिक सम्यक दर्शन। और यह परोपदेश पूर्वकम जीवाद्यधिगम निमित्तम तदुत्तरम, और जो दूसरों के उपदेश पूर्वक जीवादिक के अधिगम का निमित्त होता है या जीवादिक का अधिगम है निमित्त जिसमें, ऐसा सम्यक दर्शन होता है तदुत्तरम, वो दूसरा सम्यक दर्शन हो गया अधिगमज। इत्यनयोर अभे अयम भेद, इस प्रकार इन दोनों में अयम भेद है, ये भेद है। अंदर से तो दोनों में दर्शन मोहनि का क्षय क्षयोपशम उपशम होगा, लेकिन बाहर से जिस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी वो निसर्गज हो जाएगा, और जहां पर दूसरों के उपदेश पूर्वक जीवादिक पदार्थों का ज्ञान हुआ और सम्यक दर्शन हुआ उसका नाम अधिगमज हो जाएगा। तद्ग्रहणम किमर्थम, शंकाकार का अगला प्रश्न है कि तत् सूत्र में निसर्गाद अधिगमाद वा कह सकते थे, तत् क्यों लिखा हुआ है, तद्ग्रहणम तत् को क्यों ग्रहण किया गया है, तो अनंतर निर्देशार्थम। अनंतर माने जो पिछला सूत्र था ना उसमें अंतर न पड़ जाए, क्योंकि अगर निसर्गाद अधिगमाद वा बोलेंगे ना, आगे इसमें खुलासा कर रहे हैं, अनंतर निर्देशार्थम वो उसी पिछले सूत्र से ही कनेक्ट करने के लिए तत् लिख दिया है, जोड़ने के लिए। वह सम्यक दर्शन निसर्ग से या अधिगम से होता, अनंतरम सम्यक दर्शनम तदित्यनेन निर्दिश्यते। पिछला अनंतर माने जिस सूत्र से कोई अंतराल नहीं लिए हुए, जो पिछले सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन था, तत् वह इत्यनेन निर्दिश्यते, इस प्रकार से इस तत् शब्द के द्वारा निर्दिष्ट होता है, अर्थात तत् का मतलब वह सम्यक दर्शन। इतरथा, इतरथा का मतलब अन्यथा, अगर तत् नहीं रखते तो क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या थी। इतरथा मोक्ष मार्गोपि प्रकृतस्, प्रकरण में तो मोक्ष मार्ग भी चालू है, आ रहा समझ में। पहले सूत्र में क्या था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो प्रकरण तो उसका भी चल रहा है मोक्ष मार्ग का, तो क्या हो जाता, तस्य अभिसंबंध स्यात्, उसका अभिसंबंध बन सकता था, इसलिए तत् कहने से पिछले सूत्र में जो सम्यक दर्शन उसके साथ अपने को यहाँ पर ये निसर्ग और अधिगम को जोड़ना पड़ेगा। ननु च, अब और एक शंका आ जाती, अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, इत्यनंतरस्य सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शनस्य ग्रहणम सिद्धमिति चेत। शंकाकार भी बहुत होशियार है, पढ़ा लिखा है, वो क्या कह रहा है कि अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, ऐसा नियम है सूत्र रचनाओं में कि पिछले वाले को ग्रहण करना चाहो तो ग्रहण कर सकते हो, नहीं निषेध करना चाहो तो फिर निषेध भी हो सकता है उसका। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर अनंतर सम्यक दर्शनम ग्रहणम सिद्धम, तो पिछले सम्यक दर्शन का ग्रहण यहां सिद्ध कर लो। इति चेत, अगर ऐसी शंका करता है कोई तो न, आचार्य कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्यों, प्रत्यासत्ते प्रधानम बलीय इति मोक्ष मार्ग एव संबध्यते संबध्येत। बहुत सुंदर समाधान दिया, बोले कि जो निकट है माने इससे पिछला सूत्र है उसका अर्थ यहाँ पर अपने आप निकल आएगा कि भाई सम्यक दर्शन ही निसर्ग या अधिगम से होता है, पर आचार्य कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि निकटता तो एक के बाद दूसरे सूत्र में रहती है पर मुख्यता ज्यादा बलवान होती है। मतलब निकट तो सम्यक दर्शन है इस सूत्र के, लेकिन मुख्यता किसकी, मोक्ष मार्ग की, तो इसलिए निकट गौण हो जाएगा और जो प्रमुख है जिसका प्रकरण बनाया है इसमें तत्वार्थ ग्रंथ में सब मोक्ष मार्ग का ही वर्णन है, तो मोक्ष शास्त्र इसका दूसरा नाम है, तो फिर उसकी मुख्यता हो जाने के कारण फिर संबंध गलत हो जाएगा। तो मोक्ष मार्ग एव संबद्धेत, मोक्ष मार्ग का ही संबंध हो सकता है, क्योंकि प्रत्यासत्ते निकटता की अपेक्षा से प्रधानम बलीय, जो प्रधान होता है प्रमुख होता है वो बलवान होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए अपन ऐसा समझ लो कि कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉन्फ्रेंस का मतलब कोई बड़ा भारी सम्मेलन हो रहा है, उसमें अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई है। तो फिर प्रधानमंत्री के साथ उनका पीए भी होता है, वो भी आया हुआ है, लेकिन फोटोग्राफर कहां फोकस करता है। जो प्रधान होता है तो निकटता होने पर भी प्रधानता ज्यादा शक्ति रखती है। इसलिए यहां पर पिछला सूत्र दूसरे नंबर का सूत्र तीसरे सूत्र के निकट है, लेकिन तो भी पहला सूत्र प्रधान सूत्र है, इसलिए उसका संबंध ही जोड़ना पड़ेगा। अगर तत् नहीं लिखोगे ना तो निसर्गाद अधिगमाद, इसमें मोक्ष मार्ग का ही संबंध बनेगा कि मोक्ष मार्ग अपने आप हो जाता है या फिर मोक्ष मार्ग उपदेश से हो जाता है, ऐसा अर्थ निकलेगा उल्टा, पर ऐसा अर्थ नहीं निकालने का, इसलिए तत् शब्द दिए। तस्मात तद्वचनम क्रियते, इसलिए तत्वचन किया जाता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इति उक्तम, तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन ऐसा कहा है। अत किम तत्व इति अत आह इति अत इदम आह, अब कोई शंका करेगी ये तत्व क्या वस्तु है। तत्व यानी स्वरूप है, ये तो ठीक है, वो तो सामान्य अर्थ हो गया तत्व का, लेकिन ये क्या है तत्व, ऐसा अगर प्रश्न उठता है। अतः आचार्य कहते हैं कि इस सूत्र में आगे चौथे सूत्र में बतलाते हैं, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्, ये तत्व है। तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, तत्र चेतना लक्षण जीवा, चेतना जिसका लक्षण है, माने लक्षण यानी पहचान, चेतना जिसकी पहचान है, चेतना जिसका लक्षण है जीवा, वो जीव है। साच ज्ञानादि भेदात अनेकधा विद्यते, और वह चेतना ज्ञान आदि के भेद से अनेक प्रकार के भेदों को प्राप्त हो जाती है। यानी चेतना ज्ञान चेतना भी होती है, दर्शन चेतना भी होती है, फिर ज्ञान चेतना के भी कई भेद होते हैं। यहां पर चेतना अध्यात्म ग्रंथों वाली चेतना से भिन्न है, इसका ध्यान रखो। अध्यात्म ग्रंथ में तीन प्रकार की चेतना है, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, लेकिन यहां पर चेतना मतलब जानना देखना। यदि ये चैतन्य मुकुरेव भावाश्चि रचिता, वो चैतन्य माने वो चेतना जो है उसका मतलब जानना देखना है। साच ज्ञानादि भेदाद अनेकधा विद्यते, वो ज्ञानादिक के